नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वे स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम आई का भी अनावरण करेंगे, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। अपनी तरह की इस पहली योजना का उद्देश्य देश में हर साल 6,000 मीट्रिक टन एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण शुरू करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजामसोइद्दीन के साथ आज नई दिल्ली में तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों की समीक्षा करेंगे, बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए नई संभावनाओं की तलाश करेंगे। इंडोनेशियाई मंत्री 26 से 27 नवंबर तक भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज भुवनेश्वर जाएंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा सदस्यों को संबोधित करेंगी। साइप्रस के प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डेमेट्रियू के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि साइप्रस के साथ अपनी साझेदारी को भारत महत्व देता है, जो साझा रणनीतिक विजन और आपसी सम्मान पर आधारित है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मोरक्को नौसेना के महानिरीक्षक रियर एडमिरल मोहम्मद ताहिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की और भारत मोरक्को रक्षा सहयोग में निरंतर प्रगति की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित स्टिल्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के तहत मनीला पहुंचा, जो इस क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह यात्रा मालाबार 2025, ऑसिंडेक्स 2025, जेमिक्स 25 और कोरिया की नौसेना के साथ पहले द्विपक्षीय अभ्यास सहित बहुपक्षीय और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों के समापन के बाद हो रही है। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT की मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम की उन सार्वजनिक धमकियों की कड़ी निंदा की है, जो उन्होंने जबरन गायब होने के मामले में सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त के बचाव पक्ष के वकील को दी थी। हांगकांग के ताइपो जिले में कावासी परिसर में एक इमारत में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। 700 लोगों को अस्थायी आश्रय में पहुंचाया गया है, जबकि 279 लोग अभी भी लापता हैं। भीषण आग ने लपटों और घने धुओं का एक विशाल गुबार पैदा किया था, जो आवासीय परिसर के बाहरी हिस्से में लगाए गए बांस के मचान और निर्माण जाल पर तेजी से फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की राजकोषीय व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। इसमें वित्तीय प्रबंधन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में पुरानी कमजोरियों को उजागर किया गया है। मुंबई में इसराइल के महावाणिज्य दूत यानी रेवाच ने कहा है कि भारत और इसराइल आतंकवाद के साथ भ्रामक आख्यानों का भी सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने वर्षों तक हिंसा झेली है और अब आतंकवाद समर्थक देशों सहित जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब में शीतलहर और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कोहरे की संभावना व्यक्त की है। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आम सभा में भारत के नाम पर मुहर लगी। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे। अहमदाबाद के अलावा नाइजीरिया का अबुजा शहर भी मेजबानी के दौर में शामिल था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।